नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि नौकरी के लिए चयनित और जरूरत के अनुसार अन्य राज्यों में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को स्थानीय भाषा सीखनी चाहिए, इससे वे लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। सीतारमण ने रोजगार मेले में सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद उम्मीदवारों को तमिलनाडु स्थित सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी के लिए आवेदन करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने केंद्र के रोजगार मेले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अक्टूबर 2022 से इसका आयोजन कर रही है और अब तक लगभग 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर में 51,000 नियुक्ति पत्र डिजिटल तरीके से उम्मीदवारों को दे रहे हैं। एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस दिल्ली सिडनी और दिल्ली पेरिस सहित विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर न्यूनतम क्षमता बनाए रखेंगी। विस्तार विलय से पैदा होने वाली प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को की गई प्रतिबद्धताओं के तहत ऐसा किया जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 1 सितंबर को एयर इंडिया के साथ विस्तार के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी थी। इस सौदे के तहत सिंगापुर एयरलाइंस भी एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। प्रस्तावित विलय के कारण कुछ प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएं निगरानी संस्था ने उठाई थी। उनका समाधान करने के लिए एयरलाइन ने विलय के संबंध में कुछ वादे किए हैं। इन प्रतिबद्धताओं के अनुसार एयर इंडिया ने स्वेच्छा से कुछ घरेलू और विदेशी मार्गों पर न्यूनतम क्षमता आपूर्ति स्तर बनाए रखने की पेशकश की है। सरकार ने विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 1 के तहत सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों के 256 करोड़ रुपए के रिफंड से जुड़े 10,000 से अधिक दावों को स्वीकार कर लिया। इस समाधान योजना के तहत एमएसएमई कंपनियां कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा जब्त की गई प्रदर्शन या बोली गारंटी के 95% राशि के रिफंड का दावा कर सकती हैं। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई थी। ये योजना 17 अप्रैल को और सरकारी खरीद पोर्टल GEM पर दावे जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों विभागों ने विवाद से विश्वास 1 योजना के तहत MSME के 10,000 से अधिक दावों को स्वीकार कर लिया। इससे MSME को 256 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान मिला है और गारंटी मुक्त करने से बैंक ऋण का प्रवाह भी बढ़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी वेबकॉक्स लिमिटेड ने IPO लाने की योजना रद्द कर दी। सरकार की IPO के जरिए कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की योजना थी। सरकार की IPO के जरिए बिक्री पेशकश के तहत 3,25,00,000 शेयर बेचने की योजना थी। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कंपनी ने सेबी के पास प्रस्तावित IPO के लिए विवरण पुस्तिका 26 सितम्बर 2022 को जमा की थी। बाजार नियामक के पास उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार प्रस्तावित निर्गम को 21 सितंबर 2023 को वापस ले लिया गया। इसे वापस लेने के कारणों के बारे में जानकारी नहीं दी गई। वेबकॉस जल बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में परामर्श इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण सेवाएं प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि घरेलू दवा उद्योग को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने और क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अगुवा की भूमिका हासिल करने के लिए शोध एवं विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। मांडविया के पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय का प्रभार भी है। उन्होंने चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनियों का आह्वान किया कि वे भारत में वैश्विक बाजारों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण तैयार करें। मांडविया ने मंगलवार को दवा चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शोध एवं विकास और नवोन्मेषण पर राष्ट्रीय नीति का औपचारिक रूप से अनावरण करते हुए कहा कि घरेलू दवा कंपनियां बहुराष्ट्रीय फर्मों की तुलना में अनुसंधान और विकास पर कम निवेश करती हैं। सेबी की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने PACL समूह की अवैध योजनाओं के कुछ निवेशकों से मूल दस्तावेज जमा करने को कहा है। समिति ने करीब 19,000 रुपए तक के दावे वाले निवेशकों से कहा है कि वे अपना धन वापस पाने के लिए 31 अक्टूबर तक दस्तावेज पेश करें। समिति ने सिर्फ उन्हीं निवेशकों को अपने मूल प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा है जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति निवेशकों को धन लौटाने के लिए संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। समिति ने विभिन्न चरणों में धन वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 2016 में सेबी ने समिति का गठन किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी हितधारकों से स्क्रैपिंग नीति का समर्थन करने को कहा है। गडकरी ने एक हितधारक परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी के लिए बेहतर स्थिति होगी। इस नीति का उद्देश्य 15 से 20 साल से अधिक पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और नए वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना है। गडकरी ने कहा कि वाहनों की मजबूत मांग के लिए कई पहल शुरू की गई, जैसे राजमार्गों का विश्व स्तरीय नेटवर्क बनाना, बसों का विद्युतीकरण और वाहनों का अनिवार्य स्वचालित फिटनेस परीक्षण। उन्होंने कहा कि ऑटो मूल उपकरण निर्माताओं को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए और देश को दुनिया का सबसे बड़ा वाहन उद्योग बनाने में सहयोग करना चाहिए। गडकरी ने कहा, वाहन उद्योग इस नीति का सबसे बड़ा लाभार्थी है, उन्हें आगे आना चाहिए और 3 मुख्य स्तंभों का समर्थन करना चाहिए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।